नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के साथ।
बच्चों में पप्पू राय, सहायक प्राध्यापक, पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर सारण। आज हम समाजशास्त्र के 29वें अध्याय को पढ़ेंगे, जिसमें हमें सामाजिक असहिष्णुता एवं बहिष्कार तथा महिला समानता के लिए संघर्ष को पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं, सदियों से महिलाएं अपने ही समाज में पुरुषों के द्वारा किए गए भेदभाव के का शिकार हैं। महिलाओं के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार समाज में किया जाता रहा है। आज भी एक अदृश्य लड़ाई चल रही महिला तथा पुरुष के बीच संघर्ष का, चाहे वो पढ़ा लिखा समाज हो जिसे हम सभ्य समाज कहते हैं या अनपढ़ समाज जिसे हम असभ्य समाज भी कहते हैं, वहाँ भी महिलाएं भेदभाव का शिकार रही हैं। पुरुषों और स्त्रियों के बीच जैविक और शारीरिक अंतरों के कारण अक्सर यही समझा जाता था कि लैंगिक असमानता प्रकृति की ही देन है, किंतु इस बाहरी दिखावों के बावजूद विद्वानों ने यह भी कहा कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता प्राकृतिक नहीं बल्कि सामाजिक है। ऐसा कोई जैविक कारण नहीं दिखाई देता जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सार्वजनिक शक्ति संपन्न पदों पर स्त्रियां इतनी कम संख्या में क्यों पाई जाती हैं। जिन समाजों में यह तर्क दिया गया कि स्त्रियां जैविक रूप से परिवार की मुखिया बनने लायक नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ मातृवंशीय समाज जैसे कि केरल के नायर समाज में होता था और मेघालय का खासी समाज जो आज के आधुनिक समय में भी मातृवंशीय है, कुछ और समाज में भी समाज संचालन महिलाओं के हाथ में है और वह सफलतापूर्वक अपने समाज का संचालन करती रही हैं। आज के आधुनिक समाज में महिलाएं वह सभी कार्य सफलतापूर्वक कर रही है जो पुरुषों के लिए सुरक्षित था। महिलाएं सेना से लेकर समुद्र तथा अंतरिक्ष तक सभी दुर्गम से दुर्गम काम सफलतापूर्वक संपन्न कर रही हैं। इससे यह साबित होता है कि महिलाएं जैविक रूप से कमजोर नहीं हैं, बल्कि समाज के द्वारा कमजोर समझी जाती रही हैं। इस प्रकार लिंग भी जाति और वर्ग की तरह ही सामाजिक विषमता या असमानता और बहिष्कार का रूप है। आधुनिक भारत में स्त्रियों की स्थिति का प्रश्न 19वीं सदी के मध्य वर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों के एक हिस्से के रूप में उदित हुआ। इसे मध्य वर्गीय सुधार आंदोलनों की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इसमें बहुत से लोग नए उभरते हुए पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीय मध्य वर्गों से थे। इस संदर्भ में कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे बंगाल में राजा राममोहन राय ने सती प्रथा विरोधी अभियान का नेतृत्व किया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी में वहाँ के अग्रणी समाज सुधारक रानाडे ने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। ज्योतिबा फूले ने जातीय और लैंगिक असमानता दोनों के विरुद्ध आवाज उठाई। सावित्री बाई फूले ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए आंदोलन की और सर सैयद अहमद खान ने इस्लाम में सामाजिक सुधारों के आंदोलन का नेतृत्व किया। राजा राममोहन राय ने 1826 में ब्रह्म समाज की स्थापना की तथा सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। उन्होंने सती प्रथा का विरोध मानवतावादी तथा नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांतों तथा हिंदू शास्त्रों के आधार पर किया है। समाज सुधारक एमजी रानाडे द्वारा लिखित ग्रंथों द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रीमैरिज ऑफ विडोज और वैदिक अथॉरिटीज फॉर विडो रीमैरिज में विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति का विशद विमोचन किया, जहां पर रानाडे और राजा मोहन राय 19वीं सदी के ऊंची जातियों और मध्यम वर्गीय परिवारों से थे। वहीं सामाजिक दृष्टि से अपवर्जित जाति से ज्योतिबा फूले हुए, उन्होंने जातीय और लैंगिक दोनों ही प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया। सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले ने स्त्रियों के अधिकारों और शिक्षा के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। सावित्री बाई को प्रथम महिला शिक्षिका माना जाता है। 1852 में उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने भी बाल विवाह, सती प्रथा और स्त्रियों को शिक्षा देने का काम किया। आर्य समाज ने समाज में सुधार के लिए उल्लेखनीय प्रयास किया। कुछ महिला सुधारकों ने अपने किताब के माध्यम से भी स्त्रियों के अधिकार और शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया है। 1882 में स्त्री पुरुष तुलना नामक एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसकी लेखिका महाराष्ट्रीय गृहिणी ताराबाई द्वारा लिखी गई थी, जिसमें पुरुष समाज द्वारा अपनाए गए दोहरे मापदंडों का विरोध किया गया था। वहीं पर 1905 में सुल्तान ड्रीम लिखी गई। लेखिका बेगम रोकैया सखावत हुसैन बंगाली मुस्लिम परिवार से थी। आज भी हम देखते हैं कि आधुनिक भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी केरल के सबरीमाला मंदिर में स्त्रियों के प्रवेश को वर्जित माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आज भी स्त्रियों के खिलाफ लिंग के आधार पर असमानता एवं बहिष्कार कहीं न कहीं समाज में किसी न किसी रूप में कायम है, वहीं पर स्त्रियों का अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष भी आज कहीं न कहीं कायम है। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।